ओके, जिनके पास अपना पोथी है निकाल सकते हैं, किस्म का
शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लती कर मूल माधवती थी भक्ति जननी जतने पालना
कराइज विष्णु
माधवती थी भक्ति जननी जतने पालना करी कृष्ण बसती बसती बोली कृष्ण परमादरे बरी जुगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद होय। प्रसाद सेवा करिते होय, प्रसाद सकल पंच जय, सकल चरण सिंधु देखिया गंगा, चरण सुख न सीमा पाय, तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तोषणी जानी, गौर प्रिय साख सेवने गौर जीवन सार्थक मानी, कृष्ण भजने अनुकूल पाय जा, प्रति दिवस परम सुखे स्वीकार करता, हरे 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 हरे
अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की। इस्कन संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की। मित्रापुष्ट जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी भगोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरव भक्त वृंद की। श्री 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 राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्री राधा कुंड श्याम कुंड श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की। जय श्री श्री ब्रज वृंदावन धाम की। श्री नवदीप मायापुर धाम की। श्री क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम धाम की। श्री जगन्नाथ देव भगवान की। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की। श्री द्वारिका धाम की। श्री बद्रिका धाम की। श्री अयोध्या धाम की। गंगा देवी जमुना देवी की। वृंदा देवी तुलसी महारानी की। युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन की। समवेत भक्त वृंद की। समवेत गौर भक्त वृंद की। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। तो क्योंकि आज से तीन चार दिन के बाद में ही भगवान बलराम के आविर्भाव तिथि है, पूर्णिमा में आज एकादशी है चार दिन, और उसके एक हफ्ता के बाद भगवान की तिथि है, तो इसलिए इस सीजन में उनके ही लीला, पूरी भागवत तो उनकी लीला है, विशेष करके उनके जन्म लीला के प्रकरण की चर्चा होना चाहिए। तो लेकिन हमारे मंदिरों में जो राधा गोविंद की झूलन लीला है वो आज से ही शुरू करते हैं, एकादशी से पूर्णिमा तक तीन चार दिन करते हैं, तो उसके विषय में अगर कुछ बोलना है तो शाम को बोलेंगे, क्योंकि झूलन शाम को होता है, सुबह होता ही नहीं तो फिर हम पहले क्यों बोलेंगे उसको। तो वर्तमान समय में भागवत की परंपरा के अनुसार भागवत की चर्चा करेंगे, और जो उपयुक्त भागवत की प्रसंग है, भागवत में भगवान की प्रफुल्ल मुखचंद्र है दशम स्कंद, और दशम स्कंद के शुरुआत में प्रथम श्लोक में परीक्षित महाराज ने अभी तक नौ तक सुन चुके हैं भगवान की महिमा, और वंश परिक्रमा सुन चुके हैं, नौ में वंश वर्णन हुआ है, तो उसको सुन करके उनका मन नहीं भरा परीक्षित महाराज का। दशम स्कंद के प्रथम श्लोक में शुरुआत में उन्होंने पूछते हैं अपने गुरु श्री सुखदेव जी को, बोले हे गुरु जी कथितो वंश विस्तार, उसको और विस्तार से कहिए, जो भगवान के जन्म जिस में आया है उसको और विस्तार से कहिए। सोम सूर्य चंद्रवंश और सूर्य वंश के बारे में और विस्तार से कही है। अरे तो कह तो चुका हूँ, लेकिन देखिए पहले सूर्य होना चाहिए, पहले संडे बाद में मंडे होता है, लेकिन परीक्षित महाराज पूछते हैं कथित वंश विस्तारो सोम सूर्य, पहले सोम मतलब पहले मून बाद में सन को नाम लिए, ये तो उल्टा है, तो मंडे के बाद संडे थोड़ी आता है। लेकिन परीक्षित महाराज ऐसा पूछने का कारण है कि उनका जिगर ज़्यादा चंद्र वंश में है, क्योंकि इसी में प्रभु पधारित है, तो इसलिए इसको पहले रख करके पूछते हैं कि वंश को विस्तार करके पूछिए बोलिए। और इसी दूसरे श्लोक में वो कहते हैं जदुश्च धर्मशीलस्य नितरांग मुनिसत्तमः तत्रांशेना अवतीर्णस्य विष्णु बिर्याणि संसनः जदश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमः तत्रां सेनावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि संसनः। शब्दार्थ जदो जदु वंश का च भी धर्मशीलस्य जो धर्मनिष्ठ है नितराम अत्यंत योग्य मुनिसत्तमः मुनियों में श्रेष्ठ तत्रांशेन उस वंश में आपने अंश के साथ अवतीर्णस्य अवतरित हुए विष्णु भगवान विष्णु के बिरयाणी महिमामय कार्यकलाप संसनः कृपया हमसे वर्णन करिए। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा हे मुनि श्रेष्ठ आप परम पवित्र तथा धर्मशील जद वंशियों के भी वर्णन कर चुके हैं, अब हो सके तो कृपा करके उन भगवान विष्णु या कृष्ण के अद्भुत महिमामय कार्यकलापों का वर्णन करें जो जदवंश में आपने अंश बलदेव के साथ प्रकट हुए हैं। तात्पर्य ब्रह्म संहिता में बतलाया गया है कि विष्णु तत्व के उद्गम कृष्ण ही है, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। गोविंद कहे जाने वाले कृष्ण ही परम नियंता है, उनके शरीर नित्य आनंदमय तथा आध्यात्मिक है, वे सबके उद्गम है, उनका कोई अन्य उद्गम नहीं, क्योंकि ये समस्त कारणों के कारण है। जस्येक निश्वसित काल मथावलंब्य जीवंती लोम विलजा जगदंडनाथ विष्णुर्महान सही अजस्य कला विशेषो गोविंदम आदिपुरुषम तमह जामी। असंख्य ब्रह्मांड के प्रधान ब्रह्मांड गण महाविष्णु के एक श्वास की अवधि के बराबर जीवित रहते हैं। महाविष्णु जिन आदि भगवान गोविंद के अंश मात्र में अंश मात्र है मैं उनकी पूजा करता हूँ। गोविंद या कृष्ण आदि भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यहाँ तक के वे महाविष्णु जिनकी श्वास से करोड़ ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, कृष्ण के कला विशेष अर्थात अंश के भी अंश है। महाविष्णु संकर्षण के अंश है जो नारायण के अंश है। नारायण चतुर्विह के और चतुर्विह कृष्ण के प्रथम प्राकट्य बलदेव के अंश है। अतः जब बलदेव समेत कृष्ण आविर्भूत हुए तो उनके साथ सारे के सारे विष्णु तत्व प्रकट हुए। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे कृष्ण तथा उनके महिमामय कार्यकलाप का वर्णन करें। इस श्लोक का एक दूसरा भी अर्थ निकलता है, यद्यपि सुखदेव गोस्वामी सबसे बड़े मुनि थे तो भी वे कृष्ण का आंशिक अंशे न वर्णन ही कर सकें, क्योंकि कृष्ण का पूरा पूरा वर्णन कोई नहीं कर सकता। कहा जाता है कि अनंत देव के हजारों सिर है, और यद्यपि वे अपने हजार जिह्वा से कृष्ण का वर्णन करने का प्रयत्न करते हैं तो भी वह वर्णन अधूरा ही रह जाता है। ओम अज्ञानं तिमिरांध्यस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयहं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानितं नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशदायिनी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आज भी आप लोगों ने जो इस प्रातःकालीन भागवत सत्र में पधारे सबको विशेष स्वागत है। आज तो इसे भी पब्लिक हॉलीडे है ना नहीं, क्योंकि हमारे भारत में जो एक दूसरे संप्रदाय के लोग रहते हैं आज उनका बड़ा पर्व है, इसीलिए सरकार छुट्टी घोषणा किए हैं, वो लोग भी आज अन्न नहीं खाएंगे। तो जो भी हो, यहाँ परीक्षित महाराज ये जो श्लोक बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के सामने, इसके उनके एक बहुत बड़े भाव के प्रकट होता है कि उन्होंने कृष्ण के बारे में सुनने के लिए कितने लालायित हैं। ये प्रथम श्लोक से ही कथित वंश विस्तार, तो पूरे नवम स्कंद तो वंश वर्णन हुआ है, जदुवंश आदि का वर्णन कर चुके हैं सारे, सूर्यवंश जदुवंश सब कर चुके हैं, लेकिन नहीं, परम अद्भुत चरित्र इसमें छिपा हुआ है, इसलिए फिर बोलो। तो मतलब उनका इच्छा कृष्ण के बारे में सुनने के लिए, तो अभी अभी आगे जिससे श्लोक पढ़ते जाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा उनका भाव। तो इस श्लोक में कहते हैं जदस्य धर्मशीलस्य, क्योंकि पहले श्लोक में बोल चुके हैं कि आप उनके वंश में जो परम अद्भुत चरित्र जो है भगवान का इसी वंश में है, उसको आप और विस्तार से वर्णन कीजिए। तो किसी के वंश सोम सूर्य कहकर नहीं, सोम उन समय जो जादू हुए थे उन्हीं पूरे सोमवर्ष बात का ये डिटेल, उनसे पर्टिकुलर करके श्लोक में कह दिए वे सोम वंश तो चंद्र वंश तो बहुत राजा हुए, नहीं 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 जदस्य धर्मशीलस्य, जो सोम वंश में जो एक राजा हुए थे जिनका नाम है जदु, वो उनके वर्णन कीजिए, क्योंकि जदु के वंश में भगवान प्रकट हुए इसलिए उनका नाम है जादव। जादव इसलिए बोलते हैं कि जदुवंश है, यद्यपि जदुवंश का 40 पीढ़ी के नीचे भगवान प्रकट हुए लेकिन जदु के नाम लेते हैं, क्यों? क्योंकि धर्मशीलस्य, जदु जैसे धर्मशील और कोई नहीं थे, इसीलिए परीक्षित महाराज विशेष करके जदु के नाम लेकर के और धर्मशील कहते हैं। भगवान अपने आप को जादव कहलाते हैं और भगवान के जितने परिवार वंशी वो क्या कहलाते हैं? जादव, जदुवंशी कहलाते हैं। आज भी कोई लोग अपने आप को बोलते हैं जदुवंशी है ना, नहीं क्यों? क्योंकि जदु एक व्यक्ति और भगवान के जन्म होने से 40 पीढ़ी पहले उनका जन्म हुआ, लेकिन फिर भी उनका नाम लिया जाता है क्योंकि वो उस वंश में धर्मनिष्ठ राजा थे। क्या ऐसे धर्म किए? आप अगर वन में उनके बारे में जानेंगे ये तो गड़बड़ बात है, वो कैसे धर्म से माना है? आपने पितृ आज्ञा नहीं माने थे उन्होंने ना। जदु महाराज के पिताजी थे जजाति महाराज, ये कथा आता है नमस्कंद में। महाराज जजाति ठीक है वो बड़े प्रसिद्ध राजा थे, लेकिन उनके जो गुरुजी थे वो थे शुक्राचार्य, आचार्य शुक्र थे, और शुक्राचार्य के बेटी थे जिनका नाम था जेवजानी, और जजाति के भी राजकुमारी थे, जजाति महाराज के एक बेटी थे उनका नाम था शर्मिष्ठा। तो उन दोनों की मित्रता तो था ही, गुरुजी हमेशा आते थे, दोनों की मित्रता, दोनों सेम एज के थे, लेकिन किस कारण से एक दिन खेलना घूमना फिरना सब एक साथ होता था, एक राजकुमारी है और एक मुनि कुमारी है, ब्राह्मण की लड़की है, क्षत्रिय की लड़की, फ्रेंडशिप था ही, स्कूलमेट क्लासमेट सब थे होंगे, और जो भी खेलते खेलते एक बार कहीं जंगल में उपवन में नहाते नहाते और नहा करके उठे तो जल्दी से वो मुनि कुमारी ने उठ करके पता नहीं जल्दी से उठे कोई आ गया होगा, नहाते थे तो यंग लड़की, उठ के जल्दी से कपड़ा पहनते पहनते गलती से उनके कपड़ा पहन लिए। इसके कपड़ा शर्मिष्ठा कपड़ा, पास में से कपड़ा रखा हुआ था उसका कपड़ा पहन ली, बोले तो उठ कर देखा उन्हें कपड़ा नहीं है और उनका कपड़ा रखा हुआ है, भाई ब्राह्मण की लड़की का कपड़ा सादा सीधा होगा ही, राजकुमारी का ड्रेस तो राजकुमारी का ड्रेस होगा, उनको ही ध्यान नहीं था पहन लिया, और उसको देख करके गुस्सा होकर डांटने लगी, तो इसी में से झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा शुरू हो तो एक दोनों को गाली गलौज करने लगे, गाली गलौज करने लगे तो कम तो थे नहीं, वो बोला अरे तुम मेरे पिता के दास है, तुम भी मेरे दास ही है, वो कहने लगी, वो कहने लगा तुम तो मेरे बाप के धन से पले हुए हैं, तुम खाते रहे, इसी जो भी हो अपमान सूचक बात हुआ तो झगड़ा बढ़ गया ज़्यादा, तो वो तो भाई क्षत्रियाणी क्षत्रिय की लड़की थी, वो तो अपमान सह्य नहीं कर सकती, तो आगे उठ कर के मन में उसका घूम रहा, आगे एक कुआं के पास में जाकर धक्का मार कर उसको गिरा दिया, देवजानी को शर्मिष्ठा में डाल दिया। तो जो भी हो जजाति महाराज आ रहे थे कहीं गस्त से और वो पड़ी हुई थी अकेली कुएं में, कपड़ा तक नहीं थी शरीर में, ऐसे नग्न अवस्था में सुधा कमार की गिरा दे, तो जजाति महाराज को स्वर सुनाई पड़ा कोई रो रहा है कोई स्त्री, तो जा करके उनको उठाए, वैसे उद्धार किए, तो उद्धार किए तो देवजानी बोले मुझे उद्धार किए तो मुझे तब शादी करना पड़ेगा। तो जो भी हो वर्णन हुआ उसको देवजानी को, तो देवजानी फिर कंडीशन रखा क्योंकि भाई ये तो उन्हीं की बेटी के साथ झगड़ा हुआ था, बोला देखो मुझे आपने पत्नी के रूप में स्वीकार किए, लेकिन आपका जो बेटी है शर्मिष्ठा के पिता जजाति महाराज थे क्या? किसका? जजाति महाराज का शर्मिष्ठा से विवाह हुआ, तो जजाति महाराज के बेटी का नाम क्या था? वृषपर्वा के बेटी थे जजाति, है ना? शर्मिष्ठा करेक्ट, हाँ वृषपर्वा बेटी असुरराज वृषपर्वा, सॉरी वृषपर्वा के बेटी थे शर्मिष्ठा। तो वृषपर्वा के साथ क्यों उनके झगड़ा हुआ? तो जजाति महाराज को पता नहीं था। जजाति महाराज का जब शर्मिष्ठा का शादी हुआ था और उसको जब देवजानी ने देखा, बोला कि नहीं उसको अलग करो, उसके साथ आप रह नहीं सकते, अरे ये राजकुमारी है आपकी, जो भी हो लंबा कथा है, तो उनसे अलग रखे। और बाद में उनको कोई अलग मकान, राजा है, अलग रखे थे, तो देवजानी के साथ रहते थे अपने रॉयल हाउस में। लेकिन एक बार उनको पता चला कि वो शर्मिष्ठा के साथ भी संबंध है, शर्मिष्ठा को भी संतान है, उनके भी संतान। तो गुस्से में आकर के देवजानी अपने पिता के पास चला गया, जहाँ कंप्लेन किया, शुक्राचार्य ने गुस्से में आकर उनको साफ दे दी, ये जाते कि तुम वृद्ध हो जाओ, अकाल में वृद्ध हो गए, युवक स्तर बुढ़ापन आ गया। और जाकर रिक्वेस्ट की, उनके पत्नी तो युवती था, वो पति वृद्ध हो गए, तो बाद में उनको ही समझ आया मैं बुढ़ापति के साथ कैसे रहूँ। तो वो भी फिर रिक्वेस्ट किया, तो पिताजी बोले अब मुझे पहले इतने गुस्सा चढ़ा, मैं तो अभी सब दे दिया, अब क्या करो, ना कुछ उपाय करो, हम आपके बेटी के साथ रहेंगे, मैं तो इसी जिन वृद्धावस्था। बोले चलो एक ही उपाय है, आप जाओ आपके बेटों से आपकी जवानी मांग कर ले लो, उनको अपने बुढ़ापन दे दो, एक्सचेंज करो, ये भी हो सकता है। आजकल हम तो सोच भी नहीं सकते, लेकिन भागवत में लिखा गया है कि बुढ़ापन और युवकपन वो भी एक्सचेंज हो सकता है, वर्णन है उसमें। तो उन्होंने गए और उनका इतनी इच्छा था भोग करने का, जा करके उनके बेटों से प्रार्थना की, वो उनके बड़े पुत्र थे जदु, जाति महाराज के सबसे प्रथम पुत्र थे, उनका नाम था जदु बड़े। उनको जाकर प्रार्थना की, बोले बेटा ऐसा मेरा ऐसे से दशा है, मैं तो अभी भी युवक था आप देखा है, लेकिन क्या करूँ अभी मुझे इस प्रकार से, तो ऐसा करो क्या करो पिताजी, सेवा में सेवा आइए, तुम्हारा जो युवकपन है अभी वो मुझे दे दो, और मेरे बुढ़ापन तुम ले लो। तो जदु महाराज ने स्पष्ट मना कर दिया, मना किए, पिता के बात पालन नहीं करना है कोई धर्म थोड़ी है, पितृ आज्ञा अवज्ञा करना। लेकिन यहाँ परीक्षित महाराज कहते हैं धर्मशीलस्य, जदु से धर्मशीलस्य, बड़ा धर्मनिष्ठ है, लेकिन इतना रेकड़ है, वो तो पिता की बात माने ही नहीं। पिताजी गुस्से हो गए, गुस्से होकर के साफ दे दिए थे कि मेरे वंश में कोई बड़े लड़का कभी राजा नहीं हो सकता, इसीलिए जदु वंश में जितने बड़े लड़के होते वो राजा नहीं होते थे, छोटे लड़का ही राजा हो, क्योंकि छोटे लड़के बात माना, उनका बात माना, उनको जवानी दे दिया था, एक्सचेंज किया उनके साथ में, खुश होकर के उनको वरदान दिए, उनका साफ दे देते बड़े लड़के। तो इसमें लेकिन पिताजी के आज्ञा को अमान्य करके उनको धर्मनिष्ठ क्यों बता दिया? क्योंकि उन्होंने इसीलिए पिताजी के आज्ञा को उल्लंघन कर दिया, क्योंकि उन्होंने कृष्ण मंत्र से दीक्षित हो चुके थे, कृष्ण भक्त हो चुके थे। कृष्ण भक्त होने के बाद में किसी का यही नियम होना चाहिए कि मैं कृष्ण के लिए इस शरीर को उपयोग करूँगा, अब किसी का नहीं, यही होता है मंत्र दीक्षा के समय, मतलब समर्पण करते हैं काय मन वाक्य तीनों को समर्पण कर देना होता। तो उन्होंने समर्पण कर दिए थे, बोले मैं तो अभी आपका ही नहीं, मैं तो अभी कृष्ण शरण में अपने आप को गुरु कृष्ण के शरण में समर्पित कर चुका हूँ, कृष्ण की सेवा के लिए शरीर दूसरे की सेवा के लिए है नहीं, अभी ये मेरा शरीर मेरे मरण मेरे शक्ति सामर्थ्य मन वाणी किसी के लिए उपयोग होगा, केवल कृष्ण के लिए। और अभी आप बोलते हैं कि आपको मैं युवक शरीर दे दूं और इससे आप काम सुख भोग करेंगे, और बुढ़ापा शरीर से तो कोई सेवा कर ही नहीं सकता, मुझे भगवान का भी कितनी सेवा करना है, अभी जन्माष्टमी आ रहा है, बुढ़ापा लेकर मैं क्या करूँ, तो इसलिए मना कर दिया। तो इसी को देखिए, इस कार्य इतने महान कार्य है, कृष्ण प्रत्यार्थे अगर कोई कितने बड़े अधर्म काम करे तो उसको धर्म माना जाएगा, लेकिन कृष्ण प्रसन्नता न करके अब तथाकथित कितने बड़े धर्म पालन करे उसको धर्म को नहीं माना जाएगा। ये पुराणों में वचन लिखा, भगवान स्वयं के मृत प्रत्यार थे, मेरे प्रीति के लिए अगर कोई कितने बड़े अधर्म काम करे उसको धर्म मानना पड़ेगा, नहीं तो जितने तपस्या जितने धर्म आचरण करो अगर भगवत प्रसन्न नहीं है तो क्या मतलब उसे तपस्या तथा किम, यदि हरि प्रसन्न नहीं हुए तो तपस्या क्यों, किस लिए तपस्या कर रहे, यदि हरि प्रसन्न हो गए तपस्या किस लिए कर रहे, क्योंकि लक्ष्य तो है हरि को प्रसन्न करना, तो हरि के प्रसन्न करने के लिए जो कदम उठा चुके थे, जो संकल्प समर्पित हो चुके थे, अभी इसलिए पिता की बात नहीं माने, हाथ जोड़ के बड़े भाव से नम्र भाव से मना कर दिए। तो यद्यपि समाज के लोग साधारण लोग बोलेंगे तो महाअधर्म है, बाप की बात नहीं माना, ये बहुत गलत किया, परिवार के लोग समाज के लोग बोलेंगे, लेकिन भगवान के हिसाब से और जो धर्मपरायण लोग हैं वो सभी मानते हैं, परीक्षित महाराज जैसे महापुरुष भागवत ये मानते हैं परम धर्म थे, सबसे बड़ा धर्म कि यही से क्यों करें, भगवान के लिए कुछ भी कर नहीं कर सकते, भगवान के लिए पितृ आज्ञा अवज्ञा की, तो इसीलिए धर्म से रहस्य, यही कृष्ण प्रत्यार थे, इतने बड़े कदम उठाए थे, इसलिए उनके वंश का नाम भगवान गौरव से लेते हैं कि मैं जदु हूँ, जादव हूँ, जदवंशी हूँ, जदस्य धर्मशीलस्य, क्योंकि कृष्ण प्रत्यार थे कर्म करने के बाद आज परीक्षित महाराज कहते हैं मैं क्या किया, जदु ने तो उनके लिए पितृ आज्ञा में उल्लंघन कर दिया, मेरे पिता तो रहे ही नहीं, मैं तो जन्म से पहले पिताजी चले गए, देख भी नहीं पाया, कृष्ण के लिए क्या किया, तो कम से कम सुनो तो सही कृष्ण के बारे में, उनका मेरे पिता महादि के साथ कैसे संपर्क था, इतने आगे कहेंगे कि क्योंकि मैं इसीलिए सुनने के लिए बहुत परम व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा शरीर अपने अंगूठी लगा करके अपने शरीर में कहते गुरु जी सुखदेव को संग, ये जो मेरा शरीर है ना ये तो केवल श्री कृष्ण के प्रसाद है, उनकी कृपा से मैं ये शरीर धारण पाया हूँ, नहीं तो शरीर तो मर चुका था, द्रोणा के ब्रह्मास्त्र के द्रोणा पुत्र के द्रोणी के अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रयोग द्वारा मैं गर्भ के अंदर जल भुंज करके खत्म हो चुका था, भगवान ने स्वयं कृपा करके मेरे माँ के गर्भ में प्रवेश करके मुझे और मेरी माँ को दोनों को बचा दी, अगर वो आज ऐसे नहीं करते तो मैं आज आपका सामने नहीं होता, तो जिन शरीर को भगवत कृपा करके भगवान ने पत्र गर्भ में प्रवेश करके बचाए, इतनी बड़ी कृपा करके माँ को बेटे को हम दोनों को बचाए, अब मुझे बचा दे माँ नहीं होता तभी दिक्कत होती, दोनों को बचा दिए तो मैं उनके कथा नहीं सुनता, तो प्लीज जो भी हो जाए अब उनके बात उठाए, मैं उन्हीं की बात सुनने के लिए परम व्याकुल हूँ, आप बोलिए, कभी कभी विस्तार से बोलिए, क्यों कहते हैं विस्तार सुनने का इतनी इच्छा, कोई विस्तार से सुनने के लिए सुखदेव गोस्वामी मानव सोचेंगे बोलेंगे देखो वो बोलता है तो ही बात कहो करके, लेकिन इस थोड़े सुनने के बाद नहीं आ जाएगा, वो जाएगा टाइम हो गया, क्योंकि ये भौतिक जगत के नियम है, भौतिक संसार के नियम है, कोई भी चीज़ आपको कितने पसंद हो कितने अच्छे लगता लेकिन धीरे धीरे उसको भोगते जाए आपके मार्जिनल यूटिलिटी विल डिमिनिश, आपके आपके जो भोग के जितने वासना धीरे धीरे कम होते जाएगा, ये आप प्रमाण करके देख सकते, जैसे सबसे ज़्यादा आपके फेवरेट खाने का चीज़ कौन सा है, गुलाब जामुन मोस्टली ना, गरम गरम फ्रेश गुलाब जामुन अगर बने बिल्कुल खोए तो उसको सब पसंद करते हैं, तो ठीक है अगर आपका सामने गुलाब जामुन रखा तो एक भी और एक होता और एक तीसरा चार तक तो टेस्ट बढ़ेगा और पांच से घटना शुरू होगा, डिमिनिश है ना, बोले बढ़ेगा फिर डाउन गया, छः सात आठ, किसी किसी का जो ज्यादा बड़े शरीर वाले हो आठ दस तक बढ़ेगा, लेकिन फिर घटेगा घटेगा और ज्यादा बढ़ेगा, घटते घटते ऐसी स्थिति आ जाएगा नौ नौ और नौ उल्टी हो जाए और नहीं चाहिए पूरे घटके खत्म है ना, नहीं तो ये भौतिक संसार का नियम है, किसी भी सुख भोग की बात ले लो, कितने सबसे टॉपमोस्ट सुख भोग के विषय को ले लो और भोग शुरू कर दो, बढ़ेगा बढ़ेगा थोड़े से बढ़ने के बाद फिर बुरी तरह से घटेगा, ये भौतिक संसार का नियम है, तो बोलते तू अभी बोलता है सुनने के लिए, मैं अभी विस्तार से वर्णन करूँ तो इतनी विशाल वर्णन करूँ तो थोड़े देर तक कोई पूछा लेंगे और उसके बाद में फिर पता नहीं कब खत्म खत्म। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कह लेता हूँ। बोले नहीं परीक्षित महाराज जी बात कहते हैं, मैं मेरे मन में इस प्रकार ये हो नहीं सकता। एक तो भगवान कृष्ण का प्राकृत बात है और उनके विषय में कभी इस प्रकार ये इकोनॉमिक रूल लागू नहीं होगा घटका घटका नहीं है। आप विस्तार से वर्णन कीजिए, मैं तो खाना पीना छोड़कर बैठा हूँ, आमरण व्रत लेकर बैठा हूँ, आप बताइए। तो इसलिए जदुस्य धर्मशीलस्य नितराम मुनिषत्तमय, नितराम मुनिषत्तम। तो कहते हैं उनको मुनि सप्तम कह करके पुकारते हैं सुखदेव गोस्वामी को, और नितराम मुनि सप्तम कहते हैं। मुनि कह सकते थे, योगिराज कहते थे, गुरु जी कहते कुछ भी कह सकते थे, लेकिन मुनि सप्तम कहते हैं। तो उनमें आचार्य लोग कहते हैं परीक्षित महाराज मुनि सप्तम कहने का यह आशा, नितराम मुनि सप्तम कहने का यह आशा था उनके मन में। क्योंकि मुनि उन लोग को कहा जाता है जिन लोगों ने इस जागतिक भौतिक वस्तु और भोग चीजों के बात से ऊपर उठ करके आध्यात्मिक जगत से परे वस्तु की चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उनको मुनि कहा जाता है। जो केवल ऐसे शरीर और शारीरिक संबंधी वस्तु के बारे में चिंतन करते हैं उनको तो भोगी ही, वो मुनि हो नहीं सकते। तो जो उससे ऊपर उठ करके कि हम शरीर नहीं है, हम चिन्मय वस्तु हैं, इस बारे में इस स्तर से ऊपर उठ करके जो चिंतन मनन करते हैं उनको कहा जाता है मुनि, वो मुनि है। और जो इन प्रकार चिंतन करने वालों में से कृष्ण की भक्त हो गए, कि ऐसे चिंतन करने में कई प्रकार के ब्रह्मवादी शैव शाक्त सौर्य गाणपत्य कई हैं सब, जो ये भौतिक वस्तु से ऊपर उठ के चिंतन करते हैं ब्रह्मवादी। लेकिन जो उनमें से कृष्ण भक्त हैं इस प्रकार चिंतन में भौतिक स्तर से ऊपर उठ करके चिंता करते हैं लेकिन दयाल कृष्ण भक्त हैं, तो उनको कहा जाएगा सताम, सत मुनि है, ये असत नहीं है, सत विषय में चिंतन, कृष्ण एकमात्र सत वस्तु। तो इसलिए सताम ये सत मुनि है। और जो कृष्ण के बारे में ज्यादा मनन चिंतन करता है तो उनको सत तर, एक होता है ना गुड बेटर कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री में आएगा तो मुनि सतम मुनि सत्तर, जो कृष्ण के बारे में ज्यादा समय चिंतन करते, जो कृष्ण के भक्त हो गए मुनि सतम, जो कृष्ण के बारे में और चिंतन करते हैं सुनते कम से कम क्लास में डेली आते हैं मुनि सत्तर, और जो कृष्ण के अनंत ऐश्वर्य माधुर्यमयी रसली लीलाओं के बारे में सुनते हैं और उन्हीं में रचे पचे रहते हैं उनको कहा जाएगा सप्तम मुनि सप्तम। और नितराम, क्योंकि हर एक प्रकार से हमेशा आप इसी में डूबे रहते हो, आप तो उसी में डूबे ही रहते हो, तो इसी नितराम अलवेज जीवरिद्यात्मो नितराम मुनि सप्तम। इसको कह करके मानो ये कहते हैं कि हे सुखदेव जी, मेरा जो अभिलाषा है, मैं जो सुनने के लिए इतने पिपासु से व्याकुल हूँ कृष्ण के बारे में, उसको केवल आप ही एकमात्र योग्य व्यक्ति हो जो आप पूरा कर सकते हैं। बढ़िया, क्योंकि आप ब्रह्मा शिव पर्यंत को ही भगवान के निगुण लीला के बारे में इतने नहीं जानते हैं, परम कोई है बात है, लेकिन आप उसको जानते हैं क्योंकि आप मुनि सप्तम, आप उस लीला में प्रवेश करके रचे पचे रहते हैं। तो यू आर दी ओनली क्वालिफाइड पर्सन, मेरे इस जिज्ञासा को ठीक ठीक से पूर्ण करने के लिए आप ही एकमात्र जो कि व्यक्ति हैं। इसलिए हे नितराम मुनि सप्तम, जो हमेशा जिस रस में रच उसी रस लीला को सुनना चाहता हूँ, तो आप ही जो कि व्यक्ति हैं नितराम मुनि सप्तम। उसके क्या बताया गया, तंत्र तत्र अंशेन, तत्र मतलब उसी वंश में। अब जदु कह करते कुल जदु वंश की बात कहते हैं, तत्र अंशेन विष्णुस्य, तो इसी के बारे में प्रभुपाद जी के पूरे तात्पर्य उसी के ऊपर लिख दिए ब्रह्म संहिता में लेकर के, क्योंकि इसमें बहुत लोग फंस जाते हैं क्योंकि वैष्णव लोग भी बहुत प्रकार के वैष्णव होते हैं, वो मानते हैं कि विष्णु ही परम भगवान है, वो कृष्ण तो उनका एक पाठ है, कला हाँ। श्री संप्रदाय में अभी भी इस प्रकार के वो मानते, श्री संप्रदाय के उनके जो इष्ट है कौन है, लक्ष्मी नारायण है, सोने वाले भगवान है ना, तो वो उसको मानते नारायण हाँ। तो वो तो कस्मिन काले विश्वास नहीं करेंगे कि कृष्ण ही परमेश्वर है, बोले नहीं नारायण परमेश्वर है, नारायण तो है लेकिन नारायण तत्व तो में देखा जाए नारायण भी कृष्ण के अंश है, कृष्ण एकमात्र अंश ही है, उसको स्वीकार नहीं करते, परम वैष्णव है लेकिन नहीं मानते। वैसे अनेक लोग हैं, रामानंद भी नहीं मानते, रामानुजी भी नहीं मानते, कई है नहीं मानते। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने इसमें पूरे इस श्लोक को डाइवर्ट किया इसी तात्पर्य की कृष्ण के भगवत्ता को दिखाने के लिए, वही परमेश्वर है उसको बताने के लिए ब्रह्म संहिता से श्लोक उद्धार किए और उसको उद्धार किए। तो क्यों इधर परीक्षित महाराज क्या पता नहीं था, परीक्षित महाराज तो परम कृष्ण भक्त है कृष्ण प्रसाद, तो क्यों बोलते हैं तत्र अंशे न, तो उनके बारे में हमारे आचार्य लोग कई प्रकार के मत प्रस्तुत किए हैं, सनातन गोस्वामी सिद्धार्थ स्वामी पादा ने, वो कहते हैं कि अंश कहने का मतलब है, अंशने का मतलब है जो आपने अंश के साथ प्रकट हुए। अंश शब्द का अर्थ समझते हैं, अंश किसको कहते हैं हाँ? पाठ। अंश का मूल क्या कहा जाएगा, अंशी, करेक्ट, अंशी का जो पार्ट उसको अंश कहा जाएगा। जैसे हमारे शरीर है ये पूर्ण है, ये हाथ एक अंश है, तो हम उसके अंशी है, ये अंश अंशी संबंध कहते हैं, हाथ के शरीर से अंश अंशी संबंध, अंशी पूर्ण होता है वो अंश उनके पार्ट होता है। वह अंश कहा गया कृष्ण को क्यों, श्रीधर स्वामी उसके बाद कहते क्योंकि परीक्षित महाराज के सभा में जब गंगा किनारे हजारों और अलग प्रकार के अलग संप्रदाय के लोग बैठे हुए थे, उनके सभी के रामानंदी रामानंद बैठे होंगे और प्रकार के लोग भी, वो सब जानते हैं कृष्ण तो कला है, कैसा अवतार है, कला अवतार है, सब जानते हैं पुराण से, वो उनको कैसे पूर्ण कह लेंगे, तो इसलिए अंश कहने वाले वो भी ठीक हो जाएंगे, बोले क्यों गड़बड़ करेंगे उनके मन में, चलो बैठे सुने डिस्टर्ब ना हो, इसलिए कहेंगे। दूसरे कहते हैं प्रभुपाद जी मिला पूरे लेकिन दूसरे हमसे कहने हैं कि बोले हे गुरु जी मैं जानता हूँ आप कृष्ण लीला में डूबे हुए हो, नितराम मुनि सत्तम हो, लेकिन फिर भी कृष्ण तो कृष्ण है, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अनंत लीला के रसराज हैं, उनके लीला को पूर्ण तो कोई कह ही नहीं सकता, उनको पूरा तो भगवान स्वयं कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपका ऐश्वर्य मत बताइए, भगवान बोले मैं नहीं बोल सकता, नॉट पॉसिबल फॉर मी, मैं तो सिलेक्टिव करूंगा क्योंकि संभव नहीं है, अनंत है, अनंत को अंत किया नहीं जा सकता, साक्षात अनंत देव अनंत काल से अनंत मुख से बोलते बोलते उनको पार नहीं पाए, तो कैसे उनको पूरा किया जा सकता, इसलिए पूरा तो बोला नहीं जा सकता, कृष्ण लीला को बोल ही नहीं सकता, इसलिए परीक्षित महाराज जानते हैं बात को, गुरु जी आप अंश ने बोलिए मैं भी ना पूरा सुन सकता ना आप पूरा बोल सकते हैं, संभव नहीं है, तो इसलिए पाठ बोलिए अंश बोलिए, इसी से भी तो हो जाऊंगा, आप भी इतना बोल सकते हैं मैं भी इतना सुन सकता हूँ, हमारे लिए इतना ही काम चल जाएगा, इतने डोज हमारे लिए भी, तो इसलिए अंश है ना, क्योंकि कृष्ण के अंश ही बहुत कुछ है, इसलिए अंश। और दूसरे अंश ने का और एक अर्थ कहते हैं कि अंश मतलब पाठ के साथ में भगवान कृष्ण तो परिपूर्णतम परमेश्वर थे ही, लेकिन उन्होंने जब आए सबसे पहले वो नहीं आए, सबसे पहले आपने अंश को लाए, बलदेव को लाए, अंश है ना, मैंने आप ना पाठ बलदेव को लाए, तो मतलब मैं केवल कृष्ण की कथा नहीं सुनना चाहता हूँ और भी उनके भाई बलराम की बात भी सुनना चाहता हूँ, ये जिज्ञासा उसकी चिंता, केवल कृष्ण कथा नहीं, क्योंकि कृष्ण के लीला में बलराम की लीला तो पृष्ठ पोषक है, हर एक लीला में राम साथ में, कभी भी देखो कृष्ण अलग कभी नहीं रहते, परछाई के तरह बलराम उनके साथ में रहते, तो इसीलिए सहरामेण केशव आपको कृष्ण की बात कही है अंश के साथ, अंशे न, वो केवल अकेले अवतीर्ण नहीं हुए हैं, यदुवंश में दोनों ही अवतीर्ण हुए हैं, भाई भाई बनकर अवतीर्ण हुए हैं, हमेशा भाई बनकर आते हैं, तो इसलिए अंश के साथ मतलब बलराम के लीला के साथ ही कृष्ण लीला का वर्णन कीजिए। इसलिए अंशेन तत्र अंशेन विष्णुर्वीर्यस्य, विष्णु विष्णु का नाम लेकर के सभी इसमें कंफ्यूज होते हैं कि विष्णु का नाम तो विष्णु के अंश कृष्ण माना गया, ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन वास्तविक तृतीय अभिभक्ति करके आचार्य लोग ये कहते हैं कि नहीं, कृष्ण के अंश विष्णु है और विष्णु उनके साथ में आते हैं। प्रभुपाद जी ने इस सिद्धांत को समझाते हैं। परीक्षित महाराज कृष्ण लीला के बारे में सुनना चाहते थे और कृष्ण लीला का सिद्धांत के बारे में सुनना चाहते थे, विद तत्व, विद फैक्ट तत्व के साथ में। तो इस तत्व क्या है, कृष्ण तत्व के बारे में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखे हैं, आप सुने होंगे कि बिल्कुल कृष्ण और विष्णु की क्या रिलेशन है। वो ब्रह्म संहिता से उठाकर बोलते हैं कि ब्रह्मा जी स्वयं बात को पुष्ट किए हैं, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम, सारे कारणों का कारण जो परम ईश्वर है, ईश्वर बहुत हो सकते हैं लेकिन ईश्वर के भी ईश्वर परमेश्वर केवल कृष्ण हो सकते हैं और सारे उनके अंश हैं। और विष्णु कैसे हैं, प्रभुपाद जी ने लिखते हैं विष्णु तो उनके कितने नीचे आते हैं, कितने कोष, बोले कैसे, यद्यपि समान है लेकिन फिर भी सबसे प्रथम केवल कृष्ण थे। कृष्ण आपने आप को विस्तार किए, उनके प्रथम विस्तार कौन है, बलराम, प्रथम विष्णु प्रथम अंश है बलराम, बलराम से हुए चतुर्विभ, चार एक्सपांस हुए, वो जो चार संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव, उनमें से फिर नारायण हुए, चतुर्विभ से दूसरा चतुर्विभ हुए, दूसरे चतुर्विभ से ओ संकर्षण से नारायण हुए, और नारायण के अंश है ये महाविष्णु, जिनके बारे में वो तो कहते विष्णु अंश। तो कितने कृष्ण के बाद में आए विष्णु, और उसको प्रभुपाद जी ने ब्रह्म संहिता के प्रसिद्ध श्लोक बोलकर प्रमाण किए हैं, जो ब्रह्मा जी ने कहते हैं जस्से कनिश्वसित काल मथावलंब्यो जीवन्ति लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णुर महान सह्यजस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं आदि पुरुष उन गोविंद को भजना करता हूँ, कैसा, जिनका एक अंश है, अंश विशेष, उनका एक विशेष अंश है, कौन, उनके बारे में शुरुआत करते, जस्य एक निश्वसित काल, जस्य मतलब किनका, कस्य ना, जो उनके एक कला विशेष मात्र है उनका, जस्य एक निश्वसित, निश्वास समझते ना, निश्वास किसे कहते हैं, जो निष्कासन करते हैं जो श्वास को उसको निश्वास, जो श्वास को ग्रहण करते हैं उसको प्रश्वास, प्रवेश करता है, एक्सेल एंड इनहेल, इनहेल है प्रश्वास, एक्सेल है निश्वास, कपालभाति तो करते होंगे शायद, हाँ, निश्वास, तो जो कपालभाति करते हैं निकालते हैं कितने समय तक निकाल कर रखते हैं, अब हम सबके निश्वासित काल भी होना चाहिए ना, हम जो निश्वास निकालते हैं निष्कासन कर देते हैं कितने समय निष्कासन रखते हैं, फिर लेने से पहले कितने समय गैप देते हैं, कभी चेक किया आपने, एक सेकंड ने, एक सेकंड नहीं, वो कोई योगीराज होंगे रामदेव बाबा के फॉलोअर, एक दो मिनट निकाल कर रखें, बिल्कुल ऐसे करके वो क्या कहते हैं उसको, बंधन लगा करके, अनुबंध लगा करके इसे निकाल करके रहें, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दो मिनट होगा, हाँ उससे ज़्यादा तो नहीं, मैक्सिमम से तीन चार मिनट, बड़े बड़े योगीराज हो जाए तीन चार मिनट से ज़्यादा तो आगे जाने से, निश्वासित काल हम लोग को महान महान योगीराज का भी निश्वास काल तीन मिनट चार मिनट, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं जस्य एक निश्वसित काल, एक बार सांस निकाल दी, जिन्होंने एक बार सांस निकाल दिए उसी समय को लेकर के निश्वसित काल को, उसको निश्वसित काल कहते हैं, सांस निकाल कर रखना, एक निश्वसित काल में उसको अवलंबन करके, जैसे एक निश्वसित काल अथ अवलंब्य, उसको अवलंबन करके क्या होता है, जीवन्ति लोम विलजा जगदंडनाथः, और जो निश्वास निकाला उनके हरेक लोम कूप से
मेरे जैसे ब्रह्मा निकले जन्म हुए कितने, अरे अनेक हिसाब नहीं। जगदन्ननाथ, जगदन्ननाथ ब्रह्मा को कहते हैं, जगत के स्वामी नाथ है ब्रह्मा। बोले मेरे जैसे ब्रह्मा कितने निकले पड़े, कहां से जितने रोम है इतने निकले। एक शरीर में 3.5 करोड़ रोम होता है, तो मतलब 3.5 करोड़ तो निकले ही निकले, पर निकलते ही रहते हैं। बोले एक बार निकल के रहे, निकलते घंटे निकलते रहते हैं, जब तक वो सांस निकाल कर रहे तब तक ब्रह्मा निकलते रहते हैं। अरे कब तक जीवंती लोम मिले जा जगदन्ननाथ, कब तक निकलते रहते हैं ना, जब तक सांस अंदर नहीं लेते तब तक निकलते रहते, तब तक हमारा आयु। बोले हम निकले और फिर हम अंदर कब गए ना, हमारा 100 साल पूरा हुआ तब सांस ले, तब श्वास गया तब हम अंदर गए, फिर जब बाहर आए थे फिर अंदर चले गए, निश्वास के साथ आए थे तो प्रश्वास के साथ अंदर चले गए, जैसे हवा छोड़ते हैं ले लेते हैं, इनहेल करते तो इनहेल किए तो हम अंदर गए। तो ये जो एक्सहेल और इनहेल के बीच में टाइम कितना गैप था, ब्रह्मा बोलते मेरा आयु, मेरे जीवन में प्रकट हुआ और मरे। ब्रह्मा जी की आयु कितना पता है ना, हमारा कंप्यूटर फेल मार गया, कैलकुलेशन नहीं कर पाया। मैं एक दिन का बात बताऊं तब भी सत्य समझ नहीं पाएंगे। ब्रह्मा जी के एक दिन मतलब पूरा 24 घंटा नहीं, 12 घंटे की बात मैं कहता हूँ, केवल दिन भर का समय, सुबह से लेकर शाम तक ब्रह्मा जी के इतने समय होता है जिसमें 14 मनु के पोस्टिंग होता है। राजा बनते हैं और राजा बन करके वो फिर राज्य उनके पूरा हो जाते हैं, वो भी पूरा हो जाते हैं, उनके काल पूरा हो जाता है, एक एक करके 14 मनु के राज्य काल पूरा हो जाता है। और एक एक मनु के शासन काल कितना होता है मनु, 71 चतुर्युग, 71 चतुर्युग तक एक मनु के शासन काल होता है। और एक चतुर्युग कितना होता है, जैसे अभी कलयुग चलता है, हम तो क्या बताएं हमारा आयु, कलयुग के परमायु है 432,000 साल, कोई सकड़ किसान, हम बड़े से 100 साल तक पूरा नहीं कर पाते, लेकिन कलयुग के अवधि है 432,000, और उसका दोगुना कर दो द्वापर का होगा 864, उसका 3 गुना करो त्रेता का होगा, और उसका 4 गुना करो सत्य का होगा, तो चारों को मिला दो, चारों युग के समय को मिला दो, लगभग 43,20,000 साल है। ये होता है एक चतुर्युग, एक चतुर्युग का इतने साल होता है अपना गणना से, तो 71 चतुर्युग तक, 71 चतुर्युग तक एक मनु रहते हैं, और वैसे 14 मनु आए और गए, ब्रह्मा जी का शाम हुआ, शाम हुआ और इतने बड़े फिर रात हो। तो ये तो एक दिन का बताया, अभी सब नहीं कर सकते। एक चल चतुर्जो मैंने 71 × 43,20,000 × 1,000 इतने ब्रह्मा जी के दिन होता है, ए दिन का समय 12 घंटा होता है, और वो इतने रात होता है, उसको मिला दो डबल करो, फिर हफ्ता करो, फिर महीना करो, फिर 1 साल करो, फिर 100 साल करो, है ना। तो ये इतना समय ब्रह्मा जी के 100 साल तक कितना होता है, जिनका एक निश्वास करते हैं, निश्वास लेने में इतना टाइम लगता है ना। तो हम सोच सकते हैं कितने बड़े आदमी होगा, उनका सांस कितना होगा। बोलते वो कौन है जैसे कि निश्चित काल मथावलुम जीवंती लोम मिल जा जगदन्ननाथा, सब विष्णु महान, ओ महाविष्णु है जिनका निश्वास इतने लंबा है, हमारे पिताजी के पिताजी दादाजी इतने लंबा जिनके निश्वास काल है, हम जन्म होकर मर जाते हैं, वो महाविष्णु महान। फिर वो कौन है ना, एक कला विशेष है, वो तो उनका एक कला ही, कला कहते हैं, अंश कहते हैं, पूर्ण का एक भाग को अंश कहा जाता है, वो अंश का भी अंश हो उसको कला कहा जाएगा। बोलते ही होते हैं कि कला है विशेष कला, मतलब और भी बहुत सारा कला है, एक टुकड़ा है उनके कला का, ये महाविष्णु किन का, मैं गोविंद के जिनके भजन। तो हम तो गोविंद को ऐसे ऐसे हम पकड़ में लेकर घूमे, अभी दादा गोविंद दर्शन कराया, मैं गोविंद दिखकर आया, अरे इसी को ब्रह्मा जी कहते, इतने बड़े गोविंद की स्थिति, इतने महान जिनके अंश के अंश के अंश एक कला महाविष्णु है, महाविष्णु के किसान से गणना में बताया, आपके हालत खराब हो जाता है।
वो गोविंद है, उनको भजना करो। ये है गोविंद की स्थिति, वो है कृष्ण की स्थिति। तो इसी को चेतन महाप्रभु लाकर सिद्धांत स्थापित, तो इसी सिद्धांत को सभी को जगत में प्रकट करवाने के लिए भागवत के द्वारा परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछे हम सब के बारे में, कि हम सब समझ ले कि कृष्ण कौन है, कृष्ण तत्व को जान लो। इसीलिए प्रश्न पूछते हैं कि अंशेन विष्णुवीर्यस्य विष्णुवीर्याणि संस्मरण, आप बताइए, आप बताइए डिटेल। तो इसी प्रकार भगवान कृष्ण को आपने परिकर, आपने अंश के साथ, बलराम आदि के साथ, और उनके मधुर मधुर रसली लीलाओं को और उनके तत्व के साथ में, सिद्धांत के साथ में आप बतलाइए, मैं इसको सुनना चाहता हूँ। तो इससे हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि परीक्षित महाराज कृष्ण कथा सुनने के लिए कितने लोलुप थे। जो इस प्रकार कृष्ण कथा सुनने के लिए लोग जागृत करेगा, वो परीक्षित महाराज की तरह उत्तम गति प्राप्त कर सकता है। उसी दिन उसी 7 days के अंदर भगवत धाम चले गए, क्योंकि इतने प्रबल पिपासा था, प्रबल इच्छा था सुनने के लिए कृष्ण तत्व, तभी सब जिनका इस प्रकार की इच्छा होगा। और वो तो सुन रहे थे, घड़ी थोड़ी देख रहे थे, नहीं, खाना त्याग दिए थे, पीना त्याग दिए थे, सोना त्याग दिए थे, घर त्याग दिए थे, सब कुछ छोड़ करके ओनली टू हियर, केवल सुनने के लिए, श्रवण उद्देश्य में सर्व त्याग करके, प्रायोग बेसन लेकर के गंगा किनारे स्नान करके सुख मुख से सुनने लगे, उनको सुनाने लगे। इस प्रकार के श्रवण लिप्सा जब होगा, और क्या सुनेंगे, न केवल कृष्ण कथा, कृष्ण के तत्व सिद्धांत के साथ आपने जन्म कर्म की दिव्यता जो सुने, तो भगवान स्वयं कहते जन्म कर्म च भी दिव्य, जो उसको सुनेगा तत्व से तो निश्चित इस शरीर के बाद मेरा पास आएगा। ये प्रकट प्रमाण उसका भगवान यहाँ कहे, बट इज एग्जाम्पल, परीक्षित महाराज एग्जाम्पल बिल्कुल देने वही तो उनका पास एक सप्ताह था, सभी के पास एक सप्ताह होता भाई, सप्ताह तो 7 days का होता ना, संडे टू लेकर के फिर सैटरडे तक। भाई हमारा भी जो मृत्यु होगा इस संडे से सैटरडे के अंदर ही होगा ना, उसके बाहर कुछ और कोई डे होता है क्या, होता नहीं ना। तो 7 days के अंदर ही हम मरेंगे, तो हमारे पास ये 7 ही दिन ही है, 8वां दिन तो है ही नहीं। तो इसलिए प्रतिदिन नित्यम भागवत सभा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे भी दिल्ली आना चाहिए। केवल एक हफ्ता हमारे जीवन में कर लिए बात छुट्टी, नहीं नहीं नहीं, प्रतिदिन सप्ताह होता है, सप्ताह का एक प्यार। तो नित्यम भागवत सभा प्रतिदिन, परीक्षित महाराज के पास टाइम ही नहीं था केवल इतना था, हमारे पास इतना टाइम है, कोई दिन खाली नहीं जाना चाहिए भगवत कथा श्रवण से। इस प्रकार से हम कदम उठाना चाहिए कि एवरी डे संडे से लेकर सैटरडे तक किसी भी दिन हमारा मिस ना हो जाए कृष्ण कथा सुनने से। तो इस प्रकार के तत्व सिद्धांत के सहित कृष्ण लीला के श्रवण के इच्छा केवल मन में आ जाए, और सुनाने वाले ऐसे योग्य व्यक्ति प्राप्त हो जाए, और इस प्रकार के आप मन में योग्य इच्छा प्रकट हो जाए, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हम भगवत धाम प्राप्त कर लेंगे। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है जी? भागवत किसको कहते हैं? और भी कृष्ण कथा तो सबसे परम मधुर है, लेकिन कृष्ण को जानने के लिए कृष्ण के और भी वाक्य में जाना, इसलिए अंश शब्द में कहा गया। केवल कृष्ण कृष्ण अंश के साथ तभी तो कृष्ण के बारे में पता चले। जैसे आपके बारे में कोई जानना चाहेगा तो आपके पत्नी, आपके बेटा, आपके एड्रेस, आपके नेचर, तब जाकर आपके बारे में पूरा जान पाएंगे ना। तो इसी प्रकार कृष्ण कथा जानने के लिए तो पूरी द्वादश स्कंद है, सब कृष्ण के ही हैं, तो संपूर्ण सुन सकते, सभी में कृष्ण कथा का लिंक है। और उसके बीच में केवल कृष्ण की चरित्र जो जैसे आपके घर के बारे में, आपके परिवार के बारे में सबको बता बता करके फिर पर्टिकुलर आपके बात कही जाए, तब रोचक होता है।
आप लेट में आए क्या क्लास में, है ना? नहीं मैं कह चुका हूँ उसके बारे में। मिलन लिया तो आपके शाम को करेंगे ना, तो शाम को। और कुछ
कथा किससे सुननी चाहिए?
कथा किससे सुनना चाहिए? वक्ता से सुनना चाहिए, जो बोलने वाला वक्ता कौन होना चाहिए, ये अच्छा प्रश्न है। जैसे भागवत के पहले स्कंद में प्रथम तीन श्लोक में श्रोता वक्ता का निर्णय किया गया है। प्रभुपाद जी लिखते हैं वक्ता कैसा होना चाहिए और श्रोता भी कैसा होना चाहिए, दोनों के लक्षण बताया गया है। श्रोता कैसे होना चाहिए, वक्ता कैसे होना चाहिए। वक्ता के बारे में कहते हैं कि वक्ता निश्चित रूप से कृष्ण भक्त होना चाहिए और निश्चित रूप से प्रामाणिक परंपरागत भक्त होना चाहिए, उनसे केवल सुनना चाहिए। अगर कोई ऐसे पेशादार जो कह करके कुछ अपना उद्देश्य और है, उनसे अगर सुनेंगे गड़बड़ हो जाए। प्रभुपाद जी ने वेरी क्लियरली प्रथम स्कंद भागवत के प्रथम अध्याय में उसको वेरी क्लियरली सुखदेव जी से परिचित और उनके जितने बन सभी लोग इसको ध्यान देकर कहते हैं, सबसे पहले ध्यान दो सुनने वाले कैसे होना चाहिए, बोलने वाले कैसे होना चाहिए। तो वक्ता का सबसे प्रथम गुण क्वालिफिकेशन योग्यता होना चाहिए कि वो तो एक कृष्ण के एक अनिष्ट भक्त होना चाहिए, ये श्लोक में भी बताया। और जो कृष्ण लीला के तत्व ज्ञान से अभिज्ञ हो, केवल टीवी में देख करके आ गया नहीं और किससे देख आ गया इसे नहीं ना, जिनको तत्व तक ज्ञान हो, आपात ज्ञान नहीं तत्व ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल सिद्धांत की पता हो जिसको हो, और वो भी सिद्धांत आपने मनमानी नहीं करे, मैं सोचता हूँ ऐसा, हुआ आर यू, आप कौन सोचने वाले हो, नहीं, जो गुरु परंपरा से प्रामाणिक स्रोत से सुना हो, आपने आचार्य परंपरा कृष्ण से जो अखंड परंपरा आचार्य गुरुओं की परंपरा आता है, उस स्रोत प्रामाणिक परंपरा से जो सुन करके जो बोल रहा है, जो उन्हीं से सुनना चाहिए, यही एक वक्ता। ओके, और कुछ चारों संप्रदाय है, अच्छा एक करें। हाँ वो प्रामाणिक है, क्योंकि वो तो कम से कम कृष्ण के अंश नारायण तो मानते हैं, नारायण और कृष्ण में तत्व तो कोई भेद नहीं है, तत्व में समान, दोनों समान है। केवल इतना अंश मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप हैं अभी अपने धोती कुर्ता तो पहने ना, धोती कुर्ता पहने ना, ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के, धोती कुर्ता पहने जब आप ऑफिस जाते हैं इसी पहन के जाते हैं क्या, नहीं ना, पैंट शर्ट शूट बूट पहनते हैं, तो आपके पत्नी बोलेंगे नहीं तो हमारे प्रभु तो पैंट शर्ट वाले हैं, ये कौन होंगे, ऐसे कहेंगे क्या, नहीं बोलते वही है, भले ट्राउजर पंजाबी पहने चाहे धोती कुर्ता पहने चाहे शूट बूट पहने, वही तो भगवान जब ऑफिशियल ड्रेस पहनकर ऑफिस में बैठते हैं तो नारायण होते हैं, जो घर में जा कर के सादा पहन के बैठते हैं तो कृष्ण होते हैं, व्यक्ति यही है, इतना ही डिफरेंस है। तो ऑफिशियल को मानते हैं वो, हम घर वाले को मानते हैं बस। बहुत अच्छा बात है, प्रैक्टिकल बात पूछते हैं, क्योंकि हम लोग व्यस्त रहते हैं, समय इतना है ही नहीं, तो सीढ़ी में सुन सकते हैं क्या, तो क्या करें, दूसरा विकल्प नहीं तो सीढ़ी सुन सकते, लेकिन वो इतने अच्छा तो नहीं है, एक क्लास का नहीं है, प्रथम श्रेणी का श्रवण नहीं है, ये निम्नतर का श्रवण है। प्रथम श्रेणी का श्रवण ये है, जैसे सामना सामने बैठे आप पूछ सकते हैं, सीढ़ी को पूछ सकते हैं क्या आप, तो इसलिए सामने सामने सुन सकते हैं, ये होता है प्रथम श्रेणी का श्रवण। और जब ये उपलब्ध नहीं है तो कम से कम काम चलाओ, बस वो भी नहीं है तो किताब पढ़ो, ये सब, लेकिन प्रथम श्रेणी का श्रवण तो ही है, सामने सामने बैठ करके सुन और डाउट क्लियर करो।
आपने कहा था तत्व से कृष्ण के जन्म और मरण को जानना,
करेक्ट, तत्व मतलब जैसे मैंने सिखाया, सिखाया जैसे लिखा गया कि कृष्ण का परिचय क्या है, कृष्ण मूल परिपूर्णतम भगवान है, षडेश्वरी संपन्न, उनके अंश है बलराम, फिर उनके अंश है चतुर्विह, फिर उनके अंश द्वितीय चतुर्विह, फिर उनके अंश है नारायण, फिर उनके अंश है महाविष्णु, फिर उनके अंश गर्भसाई विष्णु, उनके अंश क्षीरदाक्षाई विष्णु, फिर उससे ब्रह्मा, फिर जीव, इसी प्रकार से जानना ये तत्व ज्ञान है ना। ये टीवी देखने से ही पता नहीं चलेगा ना। क्योंकि जदु के कुल तो हुए ना, जदु अक्सर वंश में किसी का नाम इसलिए रखा जाता है कि वंश में कई लड़के होते हैं, जो लड़का सबसे होनहार होता है, बड़े प्रबल होता है, उन्हीं के नाम से नाम पड़ जाता है, कुरुवंश कुरुवंश। इसी जदु इतने बड़े समर्पित भक्त थे तो उनके नाम से प्रसिद्ध जदु। उनके और भाई थे, चार भाई थे उन्होंने, और छोटे भाई राजा बना, और भगवान ये जो जदुवंश अभी मथुरा के जो हुआ था कृष्ण समय में भी, तभी भी जदुवंश में दो राजा थे, देवक और उग्रसेन। उग्रसेन छोटे भाई थे, बड़े भाई थे देवक। देवक के जो देवकी आदि जो उनके साथ बेटी थे, वो देवक बड़े भाई थे, उनके छोटे भाई उग्रसेन थे। उग्रसेन राजा बने क्योंकि नियम है छोटे भाई राजा बने, बड़ा भाई बन नहीं सकता, इसलिए तभी भी राजा बने। और कृष्ण भी राजा नहीं बन पाए ना, क्यों छोटे थे आठवां वो हरे कृष्ण। और कुछ सवेद भक्त वृंद की ग्रंथास भागवत महापुराण की।